नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। मार्ग के 10 सैनिक। कामाते पठमासेना द्वितीया अरति बुच्यति तृतीया खुप्पिपासाते चतुर्थी तणहा पवुच्यति। कामुक सुख तुम्हारी प्रथम सेना है, असंतोष तुम्हारी दूसरी कही जाती है, तुम्हारी तीसरी भूख तथा प्यास है, चौथी लालसा कही जाती है, पंचमम थिन मिद्धम ते छठा भीरु पवुच्यति, सप्तमी विचिकिच्छा ते मक्खो थम्भो ते अठमो, आलस्य एवं अकर्मण्यता तुम्हारी पांचवी, छठी भय कही जाती है, तुम्हारी सातवीं शंका है, पाखंड तथा हठ तुम्हारी आठवीं है, लाभो सिलोको सक्कारो मिच्छा लब्धो च यो यसो यो चत्तानम समुक्कंसे परे च अवजानती। लाभ यश सम्मान तथा जो कुछ भी प्रतिष्ठा मिथ्या रूप से प्राप्त की गई हो एवं जो भी स्वयं की स्तुति अन्य की अवमानना दोनों करता हो, ऐसा नमुचिते सेना कर्णहसा भिप्पहारणी न नम असुरो जिनाती जेत्वा च लभते सुखम। नमुचि यही तुम्हारी सेना है, कर्ण की प्रहार शक्ति है, जो वीर नहीं है वह इसे जीत नहीं पाता, किंतु इस पर विजय प्राप्त करने के बाद अतीव सुख प्राप्त होता है। समंता धजनिम दिस्वा युत्तम मारम सवाहनम युद्धाय पच्चुगच्छामि मा मम ठाना अचावई यम ते तम नपसहति सेनम लोको सदेवको तम ते पय्याय भेच्छामि आमम पत्तम व अस्मना। हाथी पर सवार मार तथा उसके चारों ओर व्यूह में रचित सेना को देखकर मैं युद्ध में आगे बढ़ूंगा, देवताओं समेत समूची दुनिया जिसे पराजित नहीं कर सकती तुम्हारी उस सेना को पत्थर से कच्चे बर्तन को तोड़ने की तरह विवेक से मैं विध्वंस कर दूंगा। वसीकरित्वा संकप्पम सतीय सुपतिष्ठितम रट्ठा रट्ठम विचरिस्सम सावके विनयम पुथु। अपने विचारों को नियंत्रित कर तथा अपनी सति को अच्छी तरह स्थापित कर मैं अनेक साम्राज्यों में विचरण करता हुआ शिष्यों को प्रशिक्षित करूंगा। सुत्तनिपात। यंगोन अंतर्राष्ट्रीय साधना केंद्र में सयाजी उबाखी द्वारा प्रशिक्षित शिविरों में उनके दिए गए प्रवचनों के अंश इस प्रकार हैं। जब आप विपस्सना लेते हैं तो मुझे अत्यंत सावधान तथा सतर्क रहना पड़ता है। लोगों को धम्म प्रदान करने में मैं पक्षपात नहीं करता। धम्म शिक्षण के समय मैं भी युद्ध में प्रवेश कर कठिन लड़ाई लड़ता हूँ तथा जब मुझे लगता है कि शरीर और मन में सच्चा अनिच्च जागृत है तभी ध्यान अच्छा होता है। मुझे आपको बार बार यह चेतावनी देनी है कि जब अनिच्च अच्छा होता है तो विरोधी शक्तियाँ उत्पन्न होंगी किंतु आप सफल होंगे। मेरे शिक्षक और परोपकारी सयाथे जी को निम्नलिखित परिस्थितियों में काम करना पड़ता था। जब वे धम्म देते थे तो लोगों को कुछ भी नहीं समझ में आता था। जब वे कहते थे अपने सिर के शीर्ष पर ध्यान केंद्रित करो तो लोगों को समझ में नहीं आता था कि वे अपने सिर के शीर्ष को कहाँ ढूंढें। उनका सब कुछ विलुप्त हो जाता था। जब उन्होंने आनापान दिया तो कुछ लोगों को अपने नासिका रंध्र नहीं मिलते थे तो उन्हें अपने हाथ से अपनी नाक पकड़नी पड़ती थी तथा इस तरह से वे आनापान का अभ्यास करते थे। जब वे श्वास पर ध्यान देने का निर्देश देते तो कुछ लोगों को इसका अनुभव ही नहीं होता था तो उन्हें अपनी नाक के सामने रूई का फाहा या महीन कपड़ा रखकर उसकी गतिविधि के माध्यम से श्वसन का निरीक्षण करना पड़ता और तब पूरा सिर ही लुप्त हो जाता। वे शिकायत करते, सयाथित जी हमें पता नहीं कि हमारा सिर कहाँ है। तो सयाथित जी उनसे कहते कि यदि उन्हें सिर का पता नहीं चलता तो वे दोनों हाथों से अपने सिर को पकड़ें, फिर कुछ समय के बाद वे अपने शरीर को महसूस नहीं कर पाते, पूरा शरीर ही गायब हो जाता था। इस तरह की बातें हमें यहाँ भी होती हुई मिलेगी। जब आप अकेले बैठते हैं तो आप स्तंभित हो जाते हैं तथा आपको ऐसा अनुभव होता है कि आपका शरीर लुप्त हो गया है, आप शून्य से अर्थात प्रारंभ से ही सीधे निर्वाण इत्यादि पर निशाना लगा रहे हैं। ठीक है, यदि आप सोचते हैं कि आपका शरीर अब वहाँ नहीं है तो बस अपने आप पर जरा प्रहार कीजिए। यह कठिन नहीं है, आपको आचार्य के पास आकर पूछने की आवश्यकता नहीं है, बस अपने आप को चुटकी काटिए, आपका शरीर वहाँ है या नहीं। ऐसी कठिनाइयाँ आती हैं, इन्हें विपल्लास या भ्रम कहा जाता है तथा वे मन में एक पागलपन पैदा करने की कोशिश करती हैं। ये हानिकारक शक्तियाँ हैं जो आपके भीतर निष्क्रिय पड़ी रहती हैं। लोग इन शक्तियों से जुड़े होते हैं तथा उनसे आसक्त हो जाते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जिसके भीतर ऐसी शक्तियाँ ना हों। जब अनिच्छ की जागरूकता उत्पन्न होती है तो ये शक्तियाँ उसे शीघ्रातिशीघ्र निष्कासित करने का प्रयास करती हैं। शक्ति कहेगी, भागो अनिच्छ, भागो। किंतु यदि अनिच्छ गहराई तक उतर जाता है तो इन शक्तियों को निस्संदेह भागना होगा। एक दिन पोठोंग ध्यान के लिए नहीं आए, किंतु अब वे ठीक हैं। जब ये शक्तियाँ बाहर निकलती हैं तो कुछ लोग चिल्लाने लगते हैं, कुछ लोग नहीं चिल्लाते, कुछ लोग तो वास्तव में उन्हें निकलते हुए देख भी सकते हैं। अनिच्छ बोध अति विशिष्ट है तथा निर्वाण का तत्व उसी में निहित है, अतः अनिच्छ से अवगत हो जाइए। किंतु तब मार आता है, मार के 10 सैनिक हैं। बुद्ध ने प्रधान सूत्र में उनके विषय में बताया है। हमें मार के 10 सैनिकों के विषय में पता होना चाहिए तथा हमें उनसे सतर्क रहना होगा। मार के 10 सैनिक कौन है जो आपकी साधना को रोकते हैं? प्रथम है कामुक लालसा। यद्यपि यहाँ आप ध्यान लगाने के लिए आते हैं किंतु निर्वाण के लिए प्रयास करना दरकिनार कर देते हैं। मैं से आज ही बाकी से मित्रता करूँगा। वे सभी प्रभावशाली व्यक्तियों को जानते हैं, मैं उनसे कुछ सहायता मांगूंगा। विद्यालयों की शिक्षा समाप्त होने पर तथा परीक्षाओं में सफल होने के पश्चात यदि आपको कोई अच्छी नौकरी मिल जाए तो अत्यंत उपयोगी होगा। अपने मन में इस उद्देश्य के साथ यहाँ आने वाले लोग भी हैं। उदाहरण स्वरूप, आप श्रद्धेय मासी सयादा के ध्यान केंद्र थाथना एत्ता में यह सोचकर जाते हैं कि यदि आपकी प्रधानमंत्री के साथ एक मित्रता हो जाए तो आपको एक आयात अनुज्ञा पत्र इम्पोर्ट लाइसेंस मिल सकेगा। इस तरह के लोग भी हैं। उनके ध्यान लगाने के पीछे उनकी प्रेरणा भौतिक लाभ प्राप्त करना है। भौतिक वस्तुओं के लिए इस प्रकार की आकांक्षा मार प्रेरित करता है। यदि इस प्रकार की इच्छा रहती है तो कोई समझ नहीं उभरेगी। मार हमारे लिए विघ्न उत्पन्न करता है जिससे हम धम्म समझ न सकें, अतः लालसा नहीं। यही कारण है कि जब मैं आपको धम्म की शिक्षा देता हूँ तो आपको कहना पड़ता है, निब्बानस्य सच्ची कर्णत्थाय मे मन्ते। निब्बान का अनुभव करने तथा मात्र उसी कारण मैं यहाँ आया हूँ। और आप निब्बान का क्यों अनुभव करना चाहते हैं? वह छोटी सी गुलाबी पुस्तक कहती है कि जब हम मरेंगे तो हमारी अधोगति लगभग निश्चित है। भिक्षुओं, मृत्यु के पश्चात जिन लोगों का मनुष्य योनि में पुनर्जन्म होता है वे इतने कम हैं जैसे मेरी उंगली के नख पर रेत के कण। जो लोग निम्न लोकों में जाते हैं वे पूरी पृथ्वी ग्रह में रेत के कणों की तरह असंख्य हैं। तथा इसका कारण क्या है? 4 आर्य सत्यों को न जानना ही इसका कारण है। अतः यदि आप 4 आर्य सत्य नहीं समझते तो आप निश्चित रूप से अस्तित्व के अधोलोकों में जाने वाले हैं। मैं आपको धम्म की शिक्षा इसलिए दे रहा हूं जिससे कि आप 4 आर्य सत्य समझें। सयाजी उबाखी, मैं उन्हें नहीं समझना चाहता। हम शनै शनै अग्रसर होना चाहते हैं तथा यदि हम 4 आर्य सत्य नहीं समझते तो कोई बात नहीं। यदि आपकी यही मनोवृत्ति है तो मैं आपकी सहायता के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। मैं तो दाता हूँ, मेरे लिए धम्म देना आसान नहीं है। जैसा कि मैंने कहा है, जब मैं आपको प्रशिक्षित करता हूँ तो उसी समय मुझे मार से संघर्ष करना पड़ता है। संभवतः समय समय पर मार मुझ पर क्रोधित हो जाता हो, किंतु इसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता। मार का दूसरा सैनिक असंतोष है, अर्थात एकाकी जीवन में आनंद न पाना। कल मैं वह कहानी पूरी नहीं कर सका। एक व्यक्ति ने केंद्र को छोड़कर चले जाने के विषय में सोचना प्रारंभ किया। वह एक बड़े नाग की तरह था। अति प्रातः जब आप लोग ध्यान लगा रहे थे तो उसने अपना सारा सामान बांध लिया। जब सब लोग यहाँ अंदर ध्यान लगा रहे थे तभी वह यहाँ से भाग जाना चाहता था। वह योजना बना रहा था कि लगभग 8 बजे जब मैं साक्षात्कार करता हूँ उसी समय वह प्रस्थान करेगा। वह पहली बस को पकड़कर यथासंभव अतिशीघ्र छोड़ने जा रहा था। अपना सामान वह बाद में लेने आता। पता नहीं क्यों उस दिन मैंने अन्य दिनों की अपेक्षा पहले ही अधिष्ठान, पाली में अधिष्ठान देने का निर्णय लिया। वह अधिष्ठान ध्यान में फंस गया, इससे वह बंध गया और छोड़ नहीं सका। किंतु जैसे ही अधिष्ठान समाप्त हुआ, नाग जो मार का सहयोगी है निकल गया। जब नाग ने उसे त्याग दिया तो उसके बाद यहाँ से छोड़ कर जाने की इच्छा समाप्त हो गई। क्या वह व्यक्ति पोठोंग अब भी यहाँ से जाना चाहेगा? नहीं, वह ऐसा नहीं करेगा। हाँ, यह अच्छी बात है। उसके जैसी एक और घटना हुई थी। वह मेरे घनिष्ठ शिष्यों में से एक के मित्र की पत्नी थी। वह हेलन यहाँ ध्यान लगाने के लिए आई थी, किंतु जब हम रात में 7 बजे ध्यान लगाने के लिए बैठने गए तो उसने शीघ्र ही अपना सारा सामान बांध लिया और वह चुपके से अंधेरे की आड़ में निकलने ही वाली थी। मैं भाग्यशाली था। अब मैं नहीं जानता वह भाग्यशाली थी या मैं था। मैंने कुछ सुना और मैंने पुकारा, वहाँ कौन है? उसके भीतर की शक्ति के छोड़ने के ठीक पहले वह वहाँ बैठी थी तथा कोशवे बॉन की पत्नी यहाँ। वे एक दूसरे के सामने वाले कक्षों में बैठकर ध्यान लगाती थी। कोशवे बॉन की पत्नी अमादा एक शक्तिशाली जादू मंडली की सदस्य थी। मेयेखा नाम का एक असुर उस पर चढ़ता था, कभी कभी 2 से 3 घंटे तक। अमादा से संबंधित समाज काफी बड़ा है। और खैर, जब इनमें से कुछ शक्तियों को दूर किया गया तो उसका अनिच्य अच्छा हो गया। जब अनिच्य की जागरूकता प्रबल हुई तो उसके भीतर की दानवी इसे सहन नहीं कर सकी। जब वह दानवी छोड़ने ही जा रही थी तो अचानक उसकी बड़ी बड़ी चमकीली आंखें दिखाई दी। ऐसा दूसरी कोशिका में बैठी हेलन के साथ हुआ। हेलन कभी बहुत स्वस्थ नहीं हुआ करती थी। वह दुबली पतली थी और उसे खांसी में खून आता था। उसके भीतर भी एक शक्ति थी, तो दोनों शक्तियां आपस में मिल गईं तथा हेलन को एक उज्ज्वल प्रकाश पुंज दिखाई दिया। वह चिल्लाई, आह! मैंने उससे कहा, आओ आओ, मैं तुम्हारे भीतर की शक्ति को भागने के लिए मजबूर कर दूंगा, तथा वह शक्ति दूर चली गई। उसके बाद से उसे अब कोई औषधि की नहीं लेनी पड़ती। उसने मेरी दवा के लिए मुझे 1 पैसा भी नहीं दिया, किंतु अब वह यहाँ से छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। शक्तियों की ऐसी ही प्रकृति होती है। उसके भीतर की शक्ति इस एकांत स्थान में नहीं रहना चाहती थी। वह भीतर से प्रकट हुई तथा भागना चाहिए। ऐसी शक्तियाँ लोगों से कहती हैं, चलो चलें, चलो चलें, चलो चुपके से निकल चलें, और तब वह व्यक्ति यहाँ से जाना चाहता है। छोड़ना चाहने वालों में एक लड़की थी जिसका नाम यू था। उसके पिता के भीतर की शक्ति चाहती थी कि वह छोड़कर चली जाए, और मैंने उसे जाने दिया। एक वही है जिसे मैंने वापस घर भेजा, क्योंकि उसने कहा कि वह अपने पिता के भीतर की शक्ति से अलग नहीं होना चाहती। उसके भीतर हिमालय की एक नागिन की बड़ी बलवान शक्ति थी। वह उस शक्ति को जाने नहीं देना चाहती थी। तो ठीक है, यदि आप उसे नहीं त्याग सकते हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने उससे कहा, किंतु मृत्यु के पश्चात तुम्हारा जन्म नागिन का होगा। वह बोली, कोई बात नहीं। वह इससे संतुष्ट थी। खैर, जब वह प्रसन्न है तो ठीक ही है ना? यह मार का दूसरा सैनिक है। इस निःशब्द शांतिपूर्ण स्थान पर वह नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि यहाँ उसके भीतर की शक्तियां उसे व्याकुल बनाती थी। जो भोजन यहाँ मिलता है उससे संतुष्ट न होना और भूख से तड़पना मार के तीसरे सैनिक के काम का परिणाम है। मैं भूखा हूँ, मुझे भूख लगी है। तो क्या आपको भी भूख लगनी प्रारंभ हो गई है? मेरे पास आने वालों में से एक साश्वेतय स्वतंत्र बर्मा के पहले राष्ट्रपति थे। उनका भोजन से लगाव इतना अधिक था कि वे खाद्य सामग्रियों से भरी देवदार की संदूकें लेकर आए। उन्होंने मुझसे कहा, सयाजी, मैं शाम को बिना खाए नहीं रह सकता। ठीक है, यदि भूख लगे तो खा सकते हैं, किंतु पहले दो या तीन दिनों तक न खाने का प्रयास करके देखिए। और प्रातः उठते ही मैं कुछ पीना चाहता हूँ। मैंने कहा, ठीक है, आप प्रातः कुछ पी सकते हैं। मैं उनके लिए यह सरल बनाना चाहता था, किंतु मैंने उनसे कहा कि आप भूख पर ध्यान न देने का प्रयास कीजिए। अतः इस प्रकार सांत्वना देने के बाद उन्होंने अपना शिविर प्रारंभ किया तथा मध्यान्ह के पश्चात खाए बिना दसों दिन बिताया। म्यम्मा एली समाचार पत्र के उतिन, जो कैबिनेट मंत्री तथा संसद के अध्यक्ष थे तथा बाद में जिन्होंने इन पदों को खो दिया, वे भी यहाँ आए थे। इस समय वे निर्वाचन आयुक्त हैं, है ना? खैर, जब वे आए तो उन्होंने मुझसे कहा, तीन दिन तक आठ शिक्षा पदों का पालन करने के बाद मुझे चक्कर आने लगता है। जीवन भर मैं उपोषित शिक्षा पदों का तीन दिनों से अधिक पालन करने में कभी भी सक्षम नहीं रहा हूँ। कृपया इस छोटी सी बात में मुझको छूट दे दीजिए। मैंने कहा, इस मामले में मैं आपको अवश्य छूट दूंगा। और इसके बाद वे ध्यान लगाने यहाँ आए। उन्होंने एक दिन ध्यान लगाया, फिर दूसरे दिन। उसके बाद वे स्वयं ही इसमें लीन हो गए, उन्हें भूख नहीं लगी। जब व्यक्ति को धम्म प्राप्त हो जाता है तो उसे भूख नहीं लगती। यदि धम्म नहीं प्राप्त होता तो उसे भूख लगती है। यह जो भूख हमारे भीतर है उसके कारण हमें लगता है कि हम भूखे हैं, किंतु यदि हम इस भूख पर नियंत्रण पा लें तब यह नहीं रह पाएगी। अचानक भूख उभरती है, भूख भूख, और जब साधक धम्म का अनुभव करता है तब कोई भूख नहीं बसती। तथा यहाँ उतिन जी थे, जिन्हें मैंने बर्मी मिष्ठान मंगजा ग्वे दिया, जिसे आप जानते हैं कि खजूरी गुड़ से बनाया जाता है। प्रतिदिन मैं उनके लिए मंगजा ग्वे खरीदता था। यह उन्हें पसंद लगने लगा तथा इसे खाकर उन्होंने आठ शिक्षा पदों का पालन किया। जब दस दिन बीत गए तो वे कुछ गोल मटोल एवं स्वस्थ हो गए थे। वे यहाँ वापस आए तथा उपोषित शिक्षा पदों का पालन किया एवं पुनः उन्हें भूख नहीं लगी। खैर, इस संबंध में सबसे खराब प्रसंग ऊए मोंग का है, जो अब बर्मा रेलवे बोर्ड के विद्युत विभाग के प्रबंधक हैं। मैंने ऐसे किसी व्यक्ति के विषय में कभी नहीं सुना है जिसे सदैव भूख लगी रहती हो, जैसे इस व्यक्ति को। उन्होंने मुझे बताया, सयाजी, मुझे प्रत्येक घंटे में एक बार कुछ न कुछ खाना पड़ता है। अरे, आप लोगों ने कभी ऐसी बात सुनी है, प्रत्येक घंटे में एक बार? रेलवे बोर्ड की गोष्ठी के अंतर्गत खाना बहुत अच्छी बात नहीं है, है ना? तथा खाने के लिए गोष्ठी छोड़कर जाना बहुत अच्छी बात नहीं है। जब ये गोष्ठियाँ होती थी तो उन्हें अपने पास एक छोटे से कागज के थैले में खजूरी गुड़ के टुकड़े रखने पड़ते थे तथा वे चुपके से उन्हें चूसते और धीरे से निकल जाते थे। मानो या न मानो, उन्हें यह गोष्ठियों के समय भी करना पड़ता था। कभी कभी वे चिंतित होते थे कि उन्हें लकवा न लग जाए, क्योंकि कार्यालय में कोई खाद्य सामग्री नहीं थी। अतः उनकी पत्नी या कोई नौकर सारा दिन वहाँ बैठकर सेवारत रहता था। वे इतने चिंतित थे। अंत में वे यहाँ आए तथा मैंने उसी प्रकार उनको सांत्वना दी और मैंने कहा, चलिए देखते हैं, देखिए आप क्या कर सकते हैं, प्रयास कीजिए। अब उनको सदैव भूख नहीं लगती। तो यह कैसे हुआ? वे एक दिन ध्यान लगाते रहे तथा भूख जो उनके लिए वर्षों से एक प्रकार की शारीरिक बीमारी थी चली गई। कहाँ गई? यह असाधारण है। हाँ, इस प्रकार की बातें यहाँ होती हैं। वास्तव में हमारे भीतर यह मार है तथा मार का सैनिक हमारे अंदर इन शक्तियों को पुनः सक्रिय करता है। मार का चौथा सैनिक भोजन एवं पेय पदार्थों में विभिन्न प्रकार के स्वाद अनुभव करने की इच्छा है। कुछ समय से मुर्गी खाने को नहीं मिली है। मुझे लगता है आप मांसाहार या थोड़ा कबाब खाना चाहेंगे, जैसे कि वे विदेशी जिनके लिए थाथना एत्ता में भीतर रह पाना कठिन हो गया था, उन्हें बाहर जाकर अपने लिए तले नूडल्स खरीदने पड़े। ऐसी कुछ इच्छाएं अप्रतिरोध्य हो जाती हैं, अतः मैं चाहता हूं कि यहाँ भोजन अच्छा बने। जब आपको आपका भोजन प्रस्तुत किया जाता है तो श्यामा यह सुनिश्चित करने के लिए इतना प्रयास करती हैं कि प्रत्येक व्यक्ति भोजन से संतुष्ट हो। क्या आपको अपने भोजन का आनंद मिलता है? क्या आपको मुर्गी की कमी खलती है जो यहाँ नहीं दी जाती? तथापि हम आपको सर्वोत्तम शाकाहारी भोजन देने का प्रयास करते हैं। यदि आप विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन लेते हैं तो क्या होता है? क्या विभिन्न स्वादों की इच्छा नहीं होगी या फिर भी होगी? हम जो भोजन लेते हैं उसे हमारी जिह्वा के संपर्क में आना पड़ता है। क्या हम इसके स्वाद का आनंद लिए बिना इसे खा सकते हैं? अरहतों के अतिरिक्त कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। आप यहाँ अपनी इच्छाओं से पूरी तरह छुटकारा पाने के लिए आए हैं। आप अपने दोषों को त्याग रहे हैं जिससे कि इच्छाएं कम हों। आप अशुद्धियों से छुटकारा पा रहे हैं। जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं तो शारीरिक स्वरूप की इच्छा नहीं उत्पन्न होती। होती है क्या? आप ध्वनियों की इच्छा को भी समाप्त कर सकते हैं। यहाँ कोई आकाशवाणी या रेडियो लेकर नहीं आता जिसमें मशीन तथा अन्य गायकों के गीत बज रहे हों। यदि आप चाहें तब भी वे यहाँ नहीं सुनाई देंगे। जहाँ तक सुगंध की इच्छा का प्रश्न है, यहाँ कोई भी इत्र तथा सुगंधियाँ धारण नहीं करता, अतः वह इच्छा भी नियंत्रित है। शारीरिक स्पर्श के लिए कोई अवसर नहीं है, अतः वह इच्छा भी समाप्त हो जाती है। किंतु क्या आप स्वाद से बच सकते हैं? यदि आप भोजन करना ही बंद कर दें तो केवल तभी आप अपनी जिह्वा से स्वाद के अनुभव से बच सकते हैं। आप डॉक्टर बुलाकर उनसे ग्लूकोज आदि की सुई लगवा सकते हैं, अन्यथा अपने शरीर को ऊर्जा देने का एक ही उपाय भोजन है, तथा वह है जिसे आपके मुख से होते हुए जिह्वा के ऊपर से गुजरना पड़ता है। यदि हम भोजन की स्वादिष्टता कुछ कम कर दें किंतु मांसाहार प्रस्तुत किए बिना, तो क्या तब उससे स्वादों की लालसा कम नहीं होती? यदि मैं सुअर के मांस के पकाए टुकड़ों की बात करूं, तो आपके भीतर तुरंत इसकी इच्छा उत्पन्न हो जाती है। किंतु हम यहाँ इस लालसा के, इस दोष के उन्मूलन के लिए आए हैं तथा आप बस ऐसा ही करने की प्रक्रिया में हैं। मुझे यहाँ पर नियंत्रण रखना पड़ता है जिससे आपके भीतर यह लालसा प्रबल न होने पाए। यदि आप इतनी पूर्णता के साथ इन दूषणों को दूर करने का प्रयास करते हैं कि उनका पूरी तरह उन्मूलन हो जाए, तो शेष प्रत्येक बात से आपको मुख मोड़ना पड़ेगा। मार आपकी आंतरिक गहराई में भोजन की तृष्णा उत्पन्न कर रहा है। हम यहाँ सायंकाल का भोजन नहीं प्रदान करते। इससे बहुत सुविधा होती है। आप देख सकते हैं कि वे किस प्रकार प्रतिदिन प्रातः भोजन पकाते हैं, तथा रसोइयों को राहत का अनुभव होता है कि उन्हें सायंकालीन भोजन नहीं बनाना है। आपके लिए भी यह श्रेयस्कर है, क्योंकि यदि आप रात में भोजन करते हैं तो आप निश्चित रूप से निद्रालु हो जाएंगे। क्या आप दोपहर के बाद खाए बिना संतुष्ट नहीं हो सकते? निसंदेह हो सकते हैं। यदि आप दिन में दो बार भोजन करते हैं तो शरीर उससे संतुष्ट हो जाएगा। यहाँ जो विदेशी महिला हैं, वे नाश्ते में बहुत ही कम खाती हैं, बस कुछ फल और दूध। वे कभी अधिक नहीं खाती, किंतु वे संतुष्ट हैं। आज प्रातः मैंने उन्हें विपस्सना दी, वे तुरंत पूरे शरीर में जा सकें। उनकी गति तेज है, किंतु जब वे शरीर के निचले भाग में जाती हैं तो वहाँ अटक जाती हैं। तो आप जानते हैं क्यों? ऐसा इसलिए कि उन्हें पोलियो हुआ था, वे विकिरण से प्रभावित हैं। वे यह स्वयं नहीं जानती। वे नेवादा मरुस्थल के एक स्थान में रहती हैं। इस मरुस्थल में परमाणु विस्फोटकों का परीक्षण हुआ था, इसी कारण वे विकिरण से प्रभावित हुई। मैं नहीं जानता कि वे रोएंगी या नहीं। यदि वे रोएं तो क्या यह अच्छा लगेगा? जब वे निचले भाग में पहुंची तो उन्हें तुरंत इतना खराब लगा कि आप उनके चेहरे पर उनकी पीड़ा देख सकते थे। यहाँ की शुद्ध शक्तियाँ अनिच्य तथा उनके भीतर का विकिरण दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। वे टकराते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी भट्ठी में ठंडा पानी डालें तो क्या होगा? क्या वह सूम नहीं करता? जो पानी आपने डाला है क्या वह भट्ठी में रहेगा? क्या वह आग में रहेगा? नहीं, कैसे रह सकता है? दो बलवान विरोधी शक्तियां जब मिलती हैं तो अंदर एक उथल पुथल होती है। मार का पांचवा सैनिक आप में उदासीनता, जड़ता तथा तंद्रा भर देता है। मैं इसे समझ सकता हूँ। इसने श्रद्धेय महामोगल्लान को भी प्रभावित किया था। जब आप अपनी कोशिका में होते हैं तो आप भी कभी कभी तंद्रिल अनुभव करते हैं। कुछ लोग तो बैठे बैठे सो जाते हैं। जब मैंने ध्यान लगाना प्रारंभ किया था तो मेरे साथ एक वृद्ध व्यक्ति आया करते थे। उनका नाम सयाजौ था। हर बार जब मैं वहां जाता था तो उन्हें अपने साथ ले जाता था। वे एक फेरी वाले व्यापारी बढ़ई थे। उन दिनों मैं जिस मकान में रहता था वह थॉमसन स्ट्रीट में था तथा उसमें कुछ मरम्मत की आवश्यकता थी। मैंने उनसे उसमें कुछ छोटे छोटे काम करने के लिए कहा। वे मेरे घर आए। हमने एक साथ चाय पी तथा अंततः मित्रवत बन गए। उन दिनों मैं पहले से ही ध्यान लगा रहा था। बहुत पहले की बात है, यह 1937 था। जब मैं ध्यान लगाने गया तो वे मेरे साथ आए तथा हम सयाथे जी के केंद्र में ध्यान कक्ष में बैठे। वे पीछे बैठे। उन्होंने अपने आप को एक योगी चद्दर में लपेट लिया और ध्यान लगाने लगे। कुछ समय बाद उन्हें ध्यान लगाते हुए भी नींद आ गई तथा उन्होंने खर्राटे भरने प्रारंभ किए। वे जोर जोर से खर्राटे भरने लगे। इस काम में वे बड़े माहिर थे। आप जानते हैं ना कि सभी लोग ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ ध्यान लगाने वालों में भी कई लोग ऐसे हैं जो खर्राटे भी भरते हैं। यह थिन एवं मिद्ध, आलस्य एवं तंद्रा का प्रकोप है। क्या आप जानते हैं कि आलस एवं तंद्रा कब उत्पन्न होती है? इनसे पूरी तरह बचना असंभव है। जब विपस्सना प्रबल होती है तो निब्बान धातु का उदय होता है। तब आपकी भेंट उन बुरी शक्तियों से होगी जो आपके भीतर निष्क्रिय रही हैं। जब ये शक्तियां प्रकट होती हैं तो वे धूम्र का रूप लेती हैं तथा जब यह धुंध प्रबल होती है तो आप तंद्रिल अनुभव करते हैं। आप ऊँघने लगते हैं। कोई बात नहीं, होने दीजिए। जब यह चला जाए तो फिर से तुरंत प्रारंभ कीजिए तथा स्वेच्छा से जानबूझकर श्वास लीजिए। आपने अपनी समाधि खो दी है। यह एक प्रकार का आंतरिक पलायन है। जब आप इस प्रकार से पलायन करते हैं तो आपकी समाधि चली जाती है। अतः आपको अपने नासिका रंध्रों पर पुनः ध्यान केंद्रित करना है। पर्याप्त तीव्रता से श्वास लीजिए और फिर स्वाभाविक श्वास पर वापस आ जाइए। किसी किसी का अनिच्य अनुभव बहुत अच्छा हो जाता है तथा आप अनिच्य की अवधारणा को जिस प्रकार समझते हैं वास्तव में उसी रूप में उसे आप अपने शरीर में पाते हैं। जब आप शरीर में उसे पाते हैं तो आपकी समझ आपके मन की गहराई में स्थापित होने लगती है। जब आपका मन उज्ज्वल एवं प्रसन्न हो जाता है तो आपके भीतर की प्रबल शक्तियों में विस्फोट होता है। जब उनका विस्फोट और हंगामा होता है तो अनिच्य लुप्त हो जाता है। आप लड़खड़ा जाते हैं, सयाजी मुझे पता नहीं क्या हो गया। कभी कभी आप अचानक इस प्रकार साहस खो देते हैं। इस समस्या से निपटने के दो तरीके हैं। या तो आप मेरे द्वारा ऊपर बताई गई विधि से अपनी समाधि पुष्ट कीजिए अथवा आप बाहर जाइए और अपने लिए कोई सीटी बजाइए तथा थोड़ी देर आराम का आनंद लीजिए। ऐसा कीजिए कि ये शक्तियां शांत हो जाएं। आपके मन के भीतर की धूम्र और धुंध जब बैठ जाए तो फिर काम में लग जाइए, सोने मत चले जाइए। इस स्थिति से पूरी तरह निपटने के यही दो तरीके हैं। वास्तव में ये व्यवहारिक तथा अत्यंत महत्वपूर्ण है। ध्यान लगाने की साधना के साथ यह तंद्रा सदैव आती है। अच्छा, उस चित्र में मनुष्य लोक के नीचे क्या है? नरक, जानवरों का लोक, प्रेत लोक एवं असुर लोक। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर अकुशल कर्म है जिनके परिणाम स्वरूप नरक, पशु योनि, प्रेत योनि या असुर योनि में पुनर्जन्म होगा। यदि आप अब से अपने आप में इन अकुशल शक्तियों का अवलोकन करते रहे तो वे समाप्त हो जाएंगे तथा उसके बाद ही कुशल शक्तियां प्रकट होंगी। अकुशल कर्म की जो शक्तियां नरक में पुनर्जन्म की कारण है, वे नरक की अग्नि के समान गर्म होती हैं। यदि जानवरों की योनि में पुनर्जन्म कराने वाली शक्तियां प्रकट होती हैं तो आप सुस्ती, भारीपन और मूर्खता का अनुभव करते हैं। कम की जो शक्तियां आपको प्रेत योनि में ले जाएंगी, वे आपको भूखे भूत की तरह अनुभव कराती हैं। आप सोचते होंगे कि आपके साथ ऐसा नहीं होगा, किंतु ऐसा हो सकता है। यह मत सोचिए कि ऐसा नहीं हो सकता। जिस समय अकुशल शक्ति आपको छोड़कर जाती है, उस समय आप कठिनाइयों का सामना करेंगे। कठोरता तथा अकड़न प्रकट होने के साथ साथ आपके लिए वह एक कठिन समय होगा। प्रत्येक शक्ति का अपना स्वयं का स्वभाव होता है और तदनुसार वे प्रकट होती हैं। जब वह प्रकट होती है तो उसे आपको अपने शरीर में अनिच्छ के साथ जानना है और वह दूर चली जाएगी। अनिच्छ के बारे में केवल बात मत कीजिए, उदय और व्यय के विषय में बस वार्तालाप मत कीजिए। अनिच्छ का वह वास्तविक ज्ञान होना चाहिए जो अनुभव के आधार पर भौतिक घटनाओं के उदय एवं विघटन को जानने से उत्पन्न होता है। इस प्रकार आप विजयी होंगे। मार के छठे सैनिक के कारण आप अकेले में नहीं रहना चाहते, भयभीत एवं आतंकित अनुभव करते हैं। कुछ लोग तो इस कक्ष में बैठने का भी साहस नहीं कर पाते, उन्हें वहां उस कमरे में स्थानांतरित होना पड़ता है। कभी कभी वे अपने साथ होने के लिए किसी साथी की तलाश करते हैं। ऐसी बातें होती हैं, व्यक्ति अकारण भयभीत हो जाता है। यह भावना अंदर से उभरती है। अकेले में डरने वालों में एक फिल्म अभिनेत्री विमिंता है जिन्होंने द पर्पल प्लेन चलचित्र बनाया था। वे विंडरमियर रोड पर एक विशाल घर में रहती हैं। उनके पति बोसेचा हैं। अपने मकान के पिछले भाग का अभिसंस्कार कर उसे और उत्कृष्ट बनाने के लिए उन्होंने लगभग 100,000 चैट खर्च किया था। बर्मा में कोई ऐसा नहीं है जिसके पास उनके जैसा प्रक्षालन गृह या बाथरूम हो। वे अत्यंत आधुनिक हैं। उनका घर तो बहुत बड़ा है, किंतु उस विशाल भवन में उन्हें अकेले रहने का साहस नहीं है। उनके साथ सदैव कोई न कोई होना चाहिए। अंततोगत्वा वे यहाँ ध्यान लगाने आई, किंतु साथ में अपना नौकर भी ले आई। यहाँ तक कि नौकर को इस कमरे में यहाँ प्रतीक्षा करने के लिए भी ले आई। उन्होंने कहा, सयाजी मुझे प्रकाश में ध्यान लगाने की अनुमति दीजिए। अतः उनके लिए मुझे कमरे को प्रकाशित रखना पड़ा, किंतु तब किसी को उनके ठीक पीछे बैठना पड़ता था। ध्यान लगाते समय कभी कभी भयभीत हो जाना समझ में आता है, किंतु यह अभिनेत्री तो शौचालय जाते समय शौचालय का द्वार भी अधखुला छोड़कर रखती थी। किसी को द्वार के निकट बैठकर प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। यह बहुत कठिन था। वह सदैव भयभीत रहती थी, सदैव। वह अकेले नहीं रह पाती थी। जब अकेली पड़ जाती तो विचित्र हो जाती थी। भय उसके भीतर व्याप्त हो जाता तथा वह सिहर उठती। जब वह यहाँ ध्यान लगाने के लिए आई तथा मैंने उसे धम्म दिया तो मुझे उसे वहाँ का वह कमरा देना पड़ा। जो अधिकाधिक सामान वह अपने घर से अपने साथ लाई थी, उसके लिए उसे एक ठेले ट्रॉली की आवश्यकता पड़ी थी। वह एक मेज और अनेक प्रकार की वस्तुएं तथा एक परिचारिका भी साथ लाई। दूसरे शिविर में कुछ कम वस्तुएं ले आई। फिर वह तीसरी बार आई और उस छोटी सी कोशिका में रुकी। इतना ही नहीं, कि वह छोटे से कमरे में रुकी, अपितु उसे किसी परिचारिका की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। वह उस अंधेरी कोशिका में अकेली रुकी थी। बाद में वह प्रतिदिन सायं केंद्र पर आने लगी। प्रतिमा बिना नागर के वह 10 दिवसीय शिविर में आई। उसे इस ध्यान से बहुत लाभ हुआ। मुझे लगता है कि अब वह इंग्लैंड में है। खैर, भयभीत होने में वह प्रथम थी, किंतु मेरे पास आने के बाद वह इस भय से मुक्त हो गई। है ना यह अच्छा? मार का 7वां सैनिक संदेह है। क्या मुझे धम्म मिल पाएगा या नहीं? मुझे लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति में इस प्रकार का संशय होता है। क्या मुझे इस साधना से कुछ प्राप्त होगा? वहां पर वह लड़की हंस रही है। निसंदेह आपको कुछ प्राप्त होगा। यद्यपि आपको कुछ प्राप्त हो जाता है, किंतु कुछ समय बाद आप जागृति के मग एवं फल पदों को भी प्राप्त कर लेना चाहते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आपको यहाँ बहुत सस्ते में यह सब मिल सकता है। आप समूचे बर्मा में ढूंढ सकते हैं। वेभूषयादों से पूछिए कि इस देश में कितनों को यह उपलब्ध हुआ है। जब आप यहाँ आते हैं तो आप प्रारंभ करने के पहले ही उसे प्राप्त कर लेना चाहते हैं, हैं? हाँ हाँ, ठीक है। यदि आप सीधे ड्रॉप करना अर्थात निर्वाण ही प्राप्त कर लेना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे आपको ऐसे साधना केंद्रों में भेज देना चाहिए जहाँ बड़ी सरलता से ऐसा कराया जाता है। जाइए आप वहीं। महत्वपूर्ण बात यह है कि अकुशल शक्तियाँ, संदेह तथा दूषण आप में निष्क्रिय रूप से विद्यमान है। आपको इन शक्तियों का सफाया कर अपने आप को निर्मल बनाना होगा। यही महत्वपूर्ण है। मार का 8वां सैनिक गर्व तथा अहंकार है। जब आपको धम्म के विषय में थोड़ी अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है तो आपको गर्व होता है। आपको अपने शरीर के अंदर धम्म मिल गया है ना, तथा उसका एहसास आप में बढ़ जाता है। जब आप कुछ शक्तियों से अपने आप को शुद्ध कर लेते हैं तो सोचते हैं, हाँ मैं ठीक हूँ, तथा आप में गर्व उत्पन्न होता है। आप वहाँ देखते हैं और सोचते हैं, हाँ वह व्यक्ति अभी ठीक से समझ नहीं पाया है, मैं उसकी कुछ सहायता करूँगा। कभी कभी ऐसा होता है, मैं अनुभव के बल पर बोल रहा हूँ। कुछ समय पहले जब मैं यहाँ ध्यान लगाता था तो डॉली के पिता ऊ माउंग जी तथा सहायक डाक आयुक्त ऊ तिन यहाँ थे। यह बहुत पहले 1953 की बात है, तथा प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी ऊला मांग और ऊ संग्यू भी थे, जो अब एक मंत्री हैं। अतः कई महत्वपूर्ण एवं प्रसिद्ध लोगों ने यहाँ साधना की है। और हाँ, उन्होंने वास्तव में वीर्य अर्थात प्रयास या पुरुषार्थ की स्थापना कर ध्यान साधना की। ऊला मांग के पिता जर्मन थे और ऊला मांग बड़े बलवान एवं उग्र थे, किंतु फिर भी वे ध्यान लगाते थे तथा उनकी धम्म में प्रगति अच्छी थी। कभी कभी जब वे ध्यान लगाते अथवा अपनी कोशिका में लेटे होते थे तो उन्हें अपने शरीर से नीली किरणें निकलती दिखाई देती थी। ऊ माउंग जी ने शांति और लगन से काम किया तथा बड़ी अच्छी समाधि विकसित की, एवं ऊ सेन नियंत ने भी अच्छा प्रयास किया। ऊला माउंग अचानक और तीव्रता से विकसित हुए। इस धम्म कक्ष का अस्तित्व उस समय तक नहीं था। वहाँ पर एक छोटी सी पुरानी झोपड़ी थी। हमने जब यह जमीन खरीदी थी तब वह वहाँ पहले से ही थी। एक दिन प्रातः हम वहाँ बैठकर वार्तालाप कर रहे थे, जब ऊला मांग अपनी ध्यान कोशिका से बाहर निकले। उन्होंने कहा, सयाजी देखिए, तथा उन्होंने अपनी लुंगी ऊपर अपनी जांघों तक उठाई। वहाँ उनकी जांघों से लेकर नीचे पिंडलियों तक बड़े बड़े सूजे हुए पिंड थे। आंतरिक शक्तियां उछल रही थी। उन्होंने कहा, सयाजी देखिए देखिए, ये आंतरिक शक्तियां कितनी उग्रता के साथ बाहर आई हैं, देख रहे हैं? उन्होंने अन्य साधकों को बताया, आपको भी मेरी तरह कड़ा परिश्रम करना होगा। इसी कारण मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ, आपको चारों ओर जाकर धम्म के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। यदि आपके प्रश्न हैं तो मुझसे पूछिए। यदि आप किसी विषय पर चर्चा करना चाहते हैं तो मेरे पास आइए। यदि आप जाकर अपनी उपलब्धियों के विषय में दूसरों से बात करते हैं तो उसमें सदैव गर्व अतः अहंकार समाहित होगा। तो उस व्यक्ति ने सोचा कि कि वह बहुत अच्छा हो गया था और दूसरों को उसकी सहायता की आवश्यकता थी। अभी तक वास्तविक अर्हत अधिक नहीं है। उलमाओं के पिता जर्मन थे तथा उस पक्ष से उनकी वंशगति या विरासत काफ़ी कठिन थी। वे एक अच्छे फुटबॉल खिलाड़ी थे तथा उनके भीतर क्रोध की शक्ति अत्यंत प्रबल थी। फुटबॉल खेलते समय अपने विरोधियों के प्रति उनकी प्रवृत्ति उन्हें गिराने, लात मारने तथा उनकी हड्डियां तोड़ने की थी। क्रोध की यह शक्ति अब बाहर आ रही थी तथा जब वे ध्यान लगा रहे थे तो उनके शरीर पर प्रकट हो रही थी। उमांग एक शांत प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उन्होंने उससे कहा, ठीक है उलमाओं, मैं सहज भाव से कर रहा हूं। मैंने उससे कहा, यह तो उस खरगोश और कछुए की कहानी की तरह है। तुम खरगोश की तरह अपने आप को बहुत तीव्र समझते हो, किंतु कछुआ धीरे धीरे तथा स्थिरता पूर्वक पकड़ लेगा। अगले दिन उलमाओं का अनिच अनुभव समाप्त हो गया। वह लुप्त हो गया और उसे पता नहीं कि वह कहाँ ढूंढे। वह मुझसे कहने लगा, सयाजी मेरी सहायता कीजिए। तो देखिए, उमांग जी ने धीरे धीरे तथा स्थिरतापूर्वक काम किया और वे एक बहुत अच्छे स्तर तक पहुंचे। उसंगनियों भी अच्छा कर रहे थे। मैं इन लोगों के बारे में आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप शक्तियों के स्वभाव के विषय में समझें। देखिए, ऐसी चीजें होती हैं, जब धम्म आप में परिपक्व होने लगे तब आप नम्र बनकर रहें। एक शांत और शालीन जीवन जीने के साथ अपनी स्वयं की साधना जारी रखें। मार्ग का नौवां सैनिक प्रतिष्ठा एवं प्रसिद्धि है। जब कोई आचार्य प्रसिद्ध हो जाता है तो उसे उपहार प्राप्त होने लगते हैं। मुझको भी काफी सम्मान तथा उपहार आदि मिलता है। मुझे इसे बहुत सीमित करना पड़ा जिससे मुझ में गर्व न उत्पन्न हो। अच्छा बताइए कि यहाँ हमारी उपलब्धियाँ तथा ज्ञान क्या गर्व के विषय नहीं है? किंतु व्यक्ति को अपने आप पर नियंत्रण तथा गर्व का दमन करना चाहिए। जब मैंने प्रशिक्षण देना प्रारंभ किया था तो केवल कुछ ही लोग यहाँ आए जो मेरे कार्यालय से सीधे संबद्ध थे। यह केंद्र कार्यालय के कर्मचारियों को उनके अवकाश के समय यहाँ ध्यान लगाने के लिए निर्मित किया गया था। इसको प्रारंभ करने के लिए पहले मैंने पैसे के बारे में नहीं सोचा, किंतु पहले धम्म दिया। कार्यालय के कर्मचारियों में से जिसने 10 दिनों तक ध्यान साधना की वह हमारे संघ का सदस्य बन गया। प्रवेश शुल्क 10 दिनों का ध्यान है, ऐसा अच्छा है ना? प्रवेश पाने के लिए आपको एक भी पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। बस नियमित रूप से ध्यान लगाएं और अपना धम्म सुरक्षित रखें। अपने धम्म को पुनः क्षीण न होने दें। इसी प्रकार इस केंद्र की स्थापना की गई थी। आप पैसे मुद्रित नहीं कर सकते, किंतु आप धम्म का अभ्यास कर सकते हैं। मैं इसी में विश्वास करता हूँ। अतः इसी कारण मेरे स्वयं के पास कोई पैसा नहीं है। यहाँ कोई भी समृद्ध नहीं है। आहा, यह उबाखी साधना केंद्र कहलाता है। तब तो उबाखी को अत्यंत गर्वित व्यक्ति होना चाहिए। खैर, मैं आचार्य हूँ, इसका स्वामी नहीं। यदि महालेखाकार कार्यालय का विपश्यना संघ मुझे निष्कासित कर देता है तो मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। अब आप समझ सकते हैं कि मैं इस केंद्र का स्वामी नहीं हूँ। वर्ष में एक बार मुझे इस पद का त्याग करना पड़ता है। यदि वे मुझे पुनः निर्वाचित करते हैं तो मैं पद संभालता हूँ। यदि वे किसी अन्य को मुझसे श्रेयस्क कर पाते हैं तथा उसे निर्वाचित करते हैं तो भी मेरे लिए अच्छी बात है। यदि समिति में कोई ऐसा है जो मुझे पसंद नहीं करता और कहता है, सयाजी बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, बहुत ज़्यादा चीखते हैं, हमें कोई और चाहिए, तो मुझे जाना ही होगा। आखिरकार यह मेरा नहीं है तथा मैंने यह प्रारंभ में ही स्पष्ट कर दिया था। मैं अमेरिका या किसी अन्य स्थान पर भी जा सकता हूँ तथा वहाँ धम्म की शिक्षा दे सकता हूँ। भौतिक लाभ के लिए शुद्ध धर्म के साथ अनुचित धम्म का मिश्रण करना मार्ग का दसवां सैनिक है। जब धम्म की शिक्षा देने के कारण किसी आचार्य को उपहारों के माध्यम से भौतिक लाभ होता है तब इस प्रकार का खतरा उत्पन्न होता है। अनुचित धर्म के माध्यम से लाभ भोग होता है। वह स्वयं की प्रशंसा तथा दूसरों के विषय में निंदा व्यक्त करते हुए वार्ता करता है। एक दिन एक विदेशी महिला मेरे पास आई तथा उसने दूसरों के विषय में बातें करना शुरू कर दिया। मैंने उसे तुरंत चुप कराया। वे हमारे बारे में कुछ भी कह सकते हैं, किंतु हम दूसरों के बारे में बात नहीं करते। भेंट एवं उपहार मिलना प्रारंभ होने के पश्चात कुछ लोग शुद्ध तथा असली धर्म की शिक्षा जारी नहीं रख पाते। अनेक शिष्य पाने के लिए तथा उन्हें प्रसन्न करने के लिए वे मिथ्या धर्म का उपदेश एवं प्रशिक्षण प्रारंभ कर देते हैं, जिसे बुद्ध ने नहीं दिया था। यह भौतिक लाभ के लिए लोभ के कारण होता है। इन 10 संकटों को याद रखें, जिन्हें हम मार के 10 सैनिक कहते हैं। मार के 10 सैनिकों की उत्पत्ति कैसे हुई? वे मार से निकलते हैं। मार विद्यमान है। प्रातिमोक्ष, पाली में प्रातिमोक्ष में बुद्ध ने कहा है कि मार विद्यमान है और हम उन पर विश्वास करते हैं। अतः यहाँ इस केंद्र में भी एक नकारात्मक विघ्नकारी शक्ति है। यही कारण है कि हम उच्चार करते हैं इमा हम भन्ते अत्भावम जीवितम भगवतो परीक्षा जामि। भन्ते श्रद्धे, इमा हम यह मैं, अत्भावम शरीर, जीवितम तथा जीवन, भगवतो बुद्ध को, परीक्षा जामि समर्पित करता हूँ। भन्ते श्रद्धेय, इमाहं यह मैं, अत्भावं शरीर, जीवितं तथा जीवन, आचार्यस्य आचार्य को, परीक्षा जामि समर्पित करता हूँ। आपको स्वयं को बुद्ध को समर्पित करना पड़ता है तथा उसी प्रकार अपने आप को आचार्य को सौंपना पड़ता है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आचार्य आपका स्वामी हो जाता है। यदि आप पूर्ण रूप से स्वयं को आचार्य को समर्पित करते हैं तो आचार्य द्वारा दिया गया संरक्षण और अधिक प्रभावशाली होता है। ऐसे व्यक्ति को आचार्य कैसे संरक्षण प्रदान कर सकता है जो उनका शिष्य होने के लिए बहुत उत्सुक न हो? संरक्षण देने का यहाँ यह अर्थ नहीं है कि आचार्य आपकी रक्षा के लिए आपको अपनी एक बड़ी बाहु से घेर लेते हैं। संरक्षण उन आर्य देवताओं से प्राप्त होता है जिनकी पारमी मेरे साथ मेरे दृढ़ संकल्प के माध्यम से विकसित हुई हैं तथा विकसित हो रही हैं। ये देवता जानते हैं कि कब कौन बेमन से साधना कर रहा है, तब वे उसकी सहायता नहीं करते। आज शाम मात्र इतना ही। भवतु सब मंगलम, रखन्तु सब देवता, सब बुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सब मंगलम, रखन्तु सब देवता, सब धम्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सब मंगलम, रखन्तु सब देवता, सब संघानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। साधु साधु साधु। अब आप 7:30 बजे सायंकाल की सामूहिक साधना प्रारंभ होने तक विश्राम कर सकते हैं।